एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज की जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार और इस ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतर रहे हैं जो सच कहूं तो लैंगिकता, शक्ति और ज्ञान के बारे में आपकी सोच को शायद हिला कर रख दे।
जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिशेल फुको की। बहुत ही प्रभावशाली और हाँ थोड़ी सी पेचीदा किताब द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी वॉल्यूम 1 द विल टू नॉलेज, हिंदी में कहें तो लैंगिकता का इतिहास ज्ञान की इच्छा।
और फूको इसमें एक बड़ा मतलब एक बुनियादी सवाल खड़ा करते हैं, क्या सच में पश्चिमी समाज ने सदियों तक खासकर उस विक्टोरियन जमाने में सेक्स को दबाया था या कहानी कुछ और ही है?
बिल्कुल, और ये सवाल सिर्फ बीते हुए कल का नहीं है। आज भी जब हम पहचान, निजी आजादी, समाज हम पर कैसे नियंत्रण रखता है, इन सब पर इतनी बहस करते हैं तो फूको के विचार एकदम ताजे लगते हैं, जरूरी लगते हैं। हाँ, ये किताब हमें उकसाती है कि हम शक्ति और सेक्स के रिश्ते को मतलब एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखें।
तो चलिए इस विचार की परतों को खोलते हैं।
हाँ हाँ, इस गुत्थी को सुलझाते हैं। सबसे पहले लेखक के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है ना, मिशेल फूको?
बिल्कुल, मिशेल फूको 1926-1984 20वीं सदी के फ्रांस के सबसे प्रभावशाली और हाँ शायद सबसे ज्यादा बहस छेड़ने वाले विचारकों में से एक थे। दार्शनिक भी, इतिहासकार भी।
और उनकी खास बात थी ये समझना कि समाज में शक्ति असल में काम कैसे करती है, मतलब सिर्फ ऊपर से हुक्म चलाकर नहीं है बल्कि
ज्ञान के जरिए। शक्ति और ज्ञान का रिश्ता, ये उनकी दिलचस्पी का मुख्य केंद्र था। उनकी दूसरी मशहूर किताबें हैं जैसे मैडनेस एंड सिविलाइजेशन या डिसिप्लिन एंड पनिश।
हाँ, उनमें भी यही दिखाया ना कि जेल, अस्पताल, स्कूल जैसी संस्थाएं सिर्फ सजा या नियम से कंट्रोल नहीं करती।
सही कहा फूको ने, दिखाया कि ये संस्थाएं ज्ञान पैदा करती हैं, परिभाषाएं, नियम, वर्गीकरण बनाती हैं और इसी ज्ञान के जरिए वो तय करती हैं कि क्या नॉर्मल है, क्या एबनॉर्मल, क्या सही है, क्या गलत। मतलब वो लोगों की सोच को, उनके व्यवहार को अंदर से ढालती हैं।
और उनका जो तरीका था जीनियोलॉजी जिसे कहते थे,
वंशावली।
हाँ, वंशावली मतलब किसी विचार या प्रैक्टिस की जड़ों तक जाना, ये देखना कि वो आज जैसा है वैसा बना कैसे, कौन सी ताकतें थीं जिन्होंने उसे ये शक्ल दी। ये उनका अनोखा तरीका था इतिहास को देखने का।
तो लैंगिकता के इतिहास के लिए भी उन्होंने यही तरीका अपनाया?
बिल्कुल, इसीलिए वो ये नहीं पूछ रहे थे कि सेक्स असल में क्या है, बल्कि ये कि सेक्स के बारे में जिसे हम सच मानते हैं वो सच बना कैसे, क्या बातें हुईं, क्यों हुईं, कौन सी बातें दबा दी गईं या नए सिरे से कही गईं। यही नजरिया इस किताब को इतना मौलिक बनाता है।
अच्छा, तो अब आते हैं सीधे किताब पर। लैंगिकता का इतिहास खंड 1, इसका सार क्या है, फूको का मेन आर्ग्यूमेंट क्या है? देखिए, फूको सीधे सीधे उस आम सोच पर हमला करते हैं जिसे वो रिप्रेसिव हाइपोथेसिस कहते हैं, दमनकारी परिकल्पना।
हाँ, ये वही बात कि पुराने जमाने में, खासकर विक्टोरियन टाइम में, सेक्स पर बड़ी पाबंदियां थी, उसे दबाया गया था, लोग खुलकर बात नहीं करते थे।
हाँ भाई, हम सब यही सुनते आए हैं ना कि पहले बहुत बंदिशें थीं, सेक्स टैबू था और अब हम ज्यादा खुले विचारों वाले हैं, ज्यादा आजाद हैं।
और फूको कह रहे हैं कि ये सच नहीं है, या पूरा सच नहीं है।
काफी हद तक फूको का तर्क है कि असल में इसका ठीक उल्टा हुआ। पिछले कुछ सदियों में सेक्स पर चुप्पी नहीं बढ़ी, बल्कि उस पर बोलने का उकसावा, इंसाइटमेंट टू डिस्कोर्स बढ़ा।
बोलने का उकसावा मतलब?
मतलब समाज ने सेक्स पर बात करना बंद नहीं किया, बल्कि और ज्यादा नए नए तरीकों से लगभग एक जुनून के साथ बोलना शुरू कर दिया। डॉक्टरों ने, मनोवैज्ञानिकों ने, कानून बनाने वालों ने, शिक्षकों ने, सबने सेक्स पर बोलना शुरू किया।
लेकिन क्यों? अगर दमन नहीं हुआ तो फिर अचानक सेक्स पर इतनी बातें क्यों होने लगी? ये थोड़ा उलझावा लग रहा है।
हाँ, यही फूको का तर्क दिलचस्प हो जाता है। वो कहते हैं कि यही शक्ति का नया, ज्यादा चालाक तरीका था। आधुनिक शक्ति सिर्फ नहीं कहकर रोकती नहीं है, वो चीजें बनाती है।
बनाती है? क्या बनाती है?
उसने सेक्स के बारे में ढेर सारा ज्ञान बनाया, नई नई कैटेगरीज बनाई, जैसे नॉर्मल सेक्स, परवर्टेड सेक्स, नियम बनाए, पहचाने गढ़ी, जैसे होमोसेक्सुअल की पहचान, यहाँ तक कि सुख के नए तरीके भी पैदा किए।
लेकिन ये सब क्यों?
ताकि व्यक्तियों को और पूरी आबादी को बेहतर ढंग से समझा जा सके, उनका मैनेजमेंट किया जा सके और उन पर कंट्रोल रखा जा सके। फूको के लिए ये सारी बातचीत असल में नियंत्रण का एक ज्यादा फैला हुआ जाल था।
तो मतलब हम जो सोचते हैं कि हम सेक्स पर बात करके आजाद हो रहे हैं, फूको कह रहे हैं कि शायद हम अनजाने में शक्ति के खेल में और ज्यादा उलझ रहे हैं।
हाँ, कुछ ऐसा ही। किताब यही पड़ताल करती है कि कैसे हमारी लैंगिकता, जो हमें इतनी निजी लगती है, वो राजनैतिक बहस, वैज्ञानिक जांच और सामाजिक नियंत्रण का इतना बड़ा अखाड़ा बन गई।
चलिए किताब के अंदर थोड़ा और चलते हैं। फूको अपनी बात को कैसे आगे बढ़ाते हैं? पहला हिस्सा है वी अदर विक्टोरियंस, हम दूसरे विक्टोरियन।
हाँ, यहाँ फूको उसी कहानी पर सवाल उठाते हैं जो हम खुद को सुनाते हैं कि विक्टोरियन बेचारे कितने दबे कुचले थे और हम कितने आजाद और बहादुर हैं जो सेक्स पर खुलकर बात करते हैं। वो पूछते हैं, भाई अगर सब कुछ इतना ही दबा हुआ था तो फिर पिछली एक सदी से हम सेक्स के बारे में इतनी ज्यादा बातें क्यों कर रहे हैं? हजारों किताबें, रिसर्च, थेरेपी।
हाँ ये तो है, हम तो लगातार सेक्स के बारे में ही बात करते रहते हैं।
बिल्कुल, फूको को लगता है कि ये दमन से मुक्ति वाली कहानी हमें अच्छा महसूस कराती है, एक तरह का हीरो बनाती है, पर ये शक्ति के असली खेल को उसके नए तरीकों को छुपा लेती है।
अच्छा, फिर वो सीधे दमनकारी परिकल्पना पर आते हैं, उसे कैसे गलत साबित करते हैं?
वो दिखाते हैं कि असल में चुप्पी नहीं थी, बल्कि सेक्स पर बोलने को लगातार बढ़ावा दिया गया। एक बड़ा उदाहरण वो कैथोलिक चर्च के कन्फेशन यानी पाप स्वीकारोक्ति का प्रथा का देते हैं।
कन्फेशन, उसका सेक्स से क्या लेना देना?
लेना देना है। धीरे धीरे चर्च ने लोगों से सिर्फ उनके गलत कामों के बारे में नहीं, बल्कि उनकी सबसे अंदरूनी यौन इच्छाओं, कल्पनाओं और विचारों को भी विस्तार से बताने के लिए कहा। ये एक तरह की तकनीक बन गई, सेक्स को शब्दों में ढालना, उसका विश्लेषण करना, उसे कबूल करना।
और ये मॉड्यूल फिर समाज के दूसरे हिस्सों में फैल गया।
हाँ, फूको का यही तर्क है। 18वीं-19वीं सदी में डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक, जज, टीचर, इन सब ने इसी कबूलनामे वाले मॉडल को अपनाया। बस धर्म की जगह विज्ञान का चोला पहना दिया।
अच्छा,
उन्होंने सेक्स का वैज्ञानिक अध्ययन शुरू किया, विकृतियों पर, बच्चों की कामुकता पर, महिलाओं के यौन व्यवहार पर, इन सब पर जमकर लिखा गया, वर्गीकरण किया गया। फूको कहते हैं ये सेंसरशिप नहीं थी, ये खास तरह का ज्ञान पैदा करने का तरीका था।
ज्ञान पैदा करना मतलब?
मतलब ये ज्ञान तय करता था कि नॉर्मल क्या है और एबनॉर्मल क्या, और फिर लोगों को इन कैटेगरी में फिट करके उन पर नियंत्रण पाना आसान हो गया। शक्ति अब कह रही थी, बोलो अपने बारे में सब सच बताओ, ताकि हम तुम्हें जान सकें, तुम्हारी मदद कर सकें, तुम्हें सुधार सकें।
समझ गया, ये तो नियंत्रण का बहुत ही बारीक तरीका है। इसके बाद आता है साइंशिया सेक्सुअलिस, लैंगिकता का विज्ञान।
हाँ, या फूको पश्चिम के इस वैज्ञानिक नजरिए की तुलना कुछ पूर्वी परंपराओं के आर्स इरोटिका यानी कामुक कला से करते हैं, जैसे भारत या चीन की कुछ परंपराएं।
क्या फर्क है दोनों में?
आर्स इरोटिका में ज्ञान का स्रोत अक्सर आनंद का अनुभव होता है और मकसद आनंद को बढ़ाना होता है, ये ज्यादा निजी होता है। दूसरी तरफ पश्चिम का साइंशिया सेक्सुअलिस कबूलनामे पर आधारित है, जहां व्यक्ति से उसकी सच्चाई निकलवाई जाती है। इसका लक्ष्य होता है सबके लिए नियम बनाना, लोगों को कैटेगरी में बांटना, नॉर्मल एबनॉर्मल तय करना और अक्सर सेक्स को बीमारी या समस्या से जोड़ना।
मतलब एक तरह से पश्चिम ने सेक्स को एक क्लिनिकल चीज बना दिया।
हाँ, कह सकते हैं, एक ऐसी चीज जिसका अध्ययन किया जाए, जिसे नियंत्रित किया जाए।
और फिर अगला हिस्सा है लैंगिकता की तैनाती।
जी,
डिप्लॉयमेंट ऑफ सेक्सुअलिटी।
ये क्या है?
इसका मतलब है कि सेक्स पर ये सारी बातचीत और ये सारा ज्ञान ऐसे ही बेतरतीब ढंग से नहीं फैला। इसे समाज में सोच समझकर एक रणनीति के तहत तैनात किया गया, ताकि कुछ खास समूहों पर नियंत्रण और प्रबंधन किया जा सके।
किन समूहों पर? फूको यहाँ चार खास किरदारों या आकृतियों की पहचान करते हैं, जिन्हें इस नए ज्ञान ने गढ़ा और निशाना बनाया। संक्षेप में कहूं तो, पहला, हिस्टेरिकल महिला। महिला शरीर को अस्थिर, भावनाओं का गुलाम और स्वाभाविक रूप से जरूरत से ज्यादा कामुक माना गया, जिससे उस पर डॉक्टरी निगरानी और नियंत्रण बहुत बढ़ गया।
अच्छा।
दूसरा, हस्त मैथुन करने वाला बच्चा। बचपन को अचानक यौन खतरों का केंद्र मान लिया गया, जिससे बच्चों पर, उनके शरीर पर, उनकी आदतों पर निगरानी बहुत बढ़ गई, स्कूलों में, घरों में।
हाँ, ये तो सुना है।
तीसरा, जनसंख्या नियंत्रित करने वाला या माल्थूसियन जोड़ा। शादीशुदा जोड़ों के यौन व्यवहार को अब सिर्फ निजी मामला नहीं माना गया, बल्कि उसे राष्ट्रीय चिंता से जोड़ दिया गया। आबादी बढ़ानी है या घटानी है, बच्चे स्वस्थ पैदा हों।
और चौथा,
चौथा, विकृत वयस्क। 19वीं सदी ने सिर्फ कुछ कामों को गलत नहीं ठहराया, बल्कि लोगों के नए प्रकार बनाए, जैसे समलैंगिक एक व्यक्ति का प्रकार बन गया, सिर्फ एक अमल नहीं। इन विकृतियों का फिर वैज्ञानिक अध्ययन शुरू हुआ, उनका इलाज ढूंढा गया, उन्हें समाज से अलग करने की कोशिश हुई।
बाप रे, तो ये सारी कैटेगरीज इसी दौर में बनी।
फूको का यही तर्क है, ये दिखाता है कि कैसे ज्ञान बनाकर लोगों को कैटेगरी में डालकर उन्हें नियंत्रित करने के नए, ज्यादा प्रभावित तरीके खोजे गए।
और किताब का आखिरी हिस्सा, मृत्यु का अधिकार और जीवन पर शक्ति, यहाँ वो बायोपावर की बात करते हैं, ये क्या है?
हाँ, ये फूको का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, बायो पावर यानी जैव शक्ति। वो कहते हैं कि पुराने जमाने में राजा की शक्ति मुख्य रूप से मारने या जीने देने की शक्ति थी, सजाए मौत देना, युद्ध करना।
हाँ, जान लेने की शक्ति।
बिल्कुल, लेकिन करीब 18वीं सदी से एक नई तरह की शक्ति उभरती है। इसका मकसद जान लेना नहीं, बल्कि जीवन को बढ़ाना, मैनेज करना, उसे ऑप्टिमाइज करना है। ये शक्ति व्यक्तियों के शरीर और पूरी आबादी के जीवन, जैसे स्वास्थ्य, जन्म दर, औसत उम्र, इन सबको नियंत्रित और व्यवस्थित करने पर ध्यान देती है।
और सेक्स का इससे क्या कनेक्शन है?
सेक्स इसके लिए एकदम सेंट्रल है, क्योंकि ये बायो पावर के दो सिरों को जोड़ता है। एक तरफ व्यक्ति के शरीर का अनुशासन, एनाटोमोपॉलिटिक्स जिसे फूको कहते हैं, शरीर को स्वस्थ रखना, उत्पादक बनाना,
और दूसरी तरफ?
दूसरी तरफ पूरी आबादी का जैविक नियमन, बायोपॉलिटिक्स, जन्म दर कंट्रोल करना, सार्वजनिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना, बीमारियों को रोकना। सेक्स व्यक्ति के शरीर से भी जुड़ा है और पूरी प्रजाति के जीवन से भी। इसीलिए आज की सरकारें, संस्थाएं, मेडिकल सिस्टम, ये सब सेक्स में इतनी दिलचस्पी लेते हैं, सिर्फ नैतिकता के लिए नहीं,
बल्कि जीवन को मैनेज करने के एक जरूरी औजार के तौर पर।
सही है,
एकदम सही,
ये बायो पावर का खेल है।
तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? इस पूरी चर्चा से हम क्या मुख्य बातें लेकर जा सकते हैं?
पहली और शायद सबसे बड़ी बात, वो जो रिप्रेसिव हाइपोथेसिस है, यानी सेक्स के ऐतिहासिक दमन वाली कहानी, वो शायद एक मिथक है। सेक्स पर ज्यादा बोलना या जानना हमेशा आजादी नहीं लाता, ये नियंत्रण का एक ज्यादा बारीक तरीका भी हो सकता है।
दूसरी बात, शक्ति सिर्फ दबाती नहीं, वो चीजें बनाती है, प्रोडक्टिव है, वो ज्ञान बनाती है, पहचाने गढ़ती है, यहां तक कि हमारी इच्छाएं और सुख भी पैदा करती है। ये सिर्फ नहीं नहीं कहती, ये हां कहकर भी काम करती है।
तीसरा, ज्ञान और शक्ति हमेशा एक साथ चलते हैं, पुवार सावार। सेक्स के बारे में जो सच हमें बताया जाता है, वो कभी भी शक्ति संबंधों से अलग नहीं होता।
चौथा, डिस्कोर्स यानी किसी चीज के बारे में बात करने का तरीका हमारी हकीकत को बनाता है। जैसे डॉक्टरों ने जब समलैंगिकता पर एक खास तरह से बात की, तो उसने न सिर्फ समाज की सोच बदली, बल्कि लोगों के खुद को देखने का तरीका भी बदल दिया।
पांचवा, बायो पावर का उदय। आज समाज जीवन को मैनेज करने पर फोकस करता है, स्वास्थ्य, आबादी, लंबी उम्र, और इसमें सेक्स एक अहम भूमिका निभाता है।
और छठा, वो कन्फेशन वाली बात, खुद के बारे में सच बोलने की जो हमारी धुन है, थेरेपी में, सोशल मीडिया पर, ये भी शक्ति का एक तरीका हो सकता है। हमें लगता है हम खुद को आजाद कर रहे हैं, पर शायद हम खुद को और ज्यादा जानने योग्य और मैनेज करने योग्य बना रहे हैं।
हाँ, ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी अपनी सच्चाई बताने की इच्छा भी कैसे इस्तेमाल हो सकती है।
फूको के कुछ कोर्स भी बड़े दमदार हैं, जैसे उनका वो सवाल के
सवाल ये नहीं है कि हम दमित क्यों हैं, बल्कि ये कि हम इतने जुनून से क्यों कहते हैं कि हम दमित हैं। ये सुन के लगता है कहीं हम अपनी मुक्ति की कहानी के ही कैदी तो नहीं बन गए।
बिल्कुल, और शक्ति के बारे में उनकी वो बात भी बहुत अलग है
कि शक्ति हर जगह है, इसलिए नहीं कि वो सब कुछ समेट लेती है, बल्कि इसलिए कि वो हर जगह से आती है। मतलब शक्ति किसी एक बॉस या सरकार के पास नहीं है, वो रिश्तों में, बातों में, हर जगह फैली हुई है।
और ये भी जो आजादी की हमारी समझ को सीधा चैलेंज करता है,
कि ये नहीं सोचना चाहिए कि सेक्स को हाँ कहकर कोई शक्ति को ना कह रहा है। मतलब सेक्सुअल फ्रीडम की बात करना भी शक्ति के खेल का ही हिस्सा हो सकता है। शक्ति हमारी आजादी की इच्छा का भी इस्तेमाल कर सकती है।
हाँ, ये तो बहुत गहरा है, और आखिर में वो आधुनिक नियंत्रण के तरीकों को जो बताता है
कि सेक्स केवल ऐसी चीज नहीं थी जिसका न्याय किया जाए, जैसे पाप या अपराध, ये एक चीज थी जिसका प्रबंधन एडमिनिस्टर किया जाए। ये दिखाता है कि कैसे कंट्रोल सजा से हटकर मैनेजमेंट और सुधार पर ज्यादा फोकस हो गया है।
तो फुको के ये भारी भरकम विचार, इनका आज की हमारी जिंदगी में क्या मतलब है? हम इन्हें रोजमर्रा में कैसे देख सकते हैं?
पहली बात, ये हमें अपनी यौन पहचानों को, जैसे हेट्रोसेक्सुअल, होमोसेक्सुअल, बायसेक्सुअल, असेक्सुअल, इनको देखने का एक नया लेंस देता है। फुको के हिसाब से ये कोई प्राकृतिक या फिक्स्ड कैटेगरी नहीं है, ये इतिहास में बनी है, शक्ति और ज्ञान के खेल में बनी है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इन लेबलों को लेके थोड़ा कम कट्टर होना चाहिए।
हाँ, शायद ज्यादा आलोचनात्मक और लचीला ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये लेबल बने कैसे और ये क्या काम करते हैं। दूसरी बात, ये हमें उन थेरेपीज या सेल्फ हेल्प कल्चर पर सवाल उठाने में मदद करता है जो हमारी असली यौन प्रकृति या सच्ची पहचान खोजने का वादा करते हैं। क्या ये वाकई मुक्ति है या खुद को जानने और क्लासिफाई करने की उसी मशीनरी का हिस्सा है जिससे शक्ति काम करती है?
और समाज के लेवल पर, जैसे आजकल भारत में भी पहचान, स्वास्थ्य, निजी आजादी पर इतनी बातें होती हैं।
बायोपार का कॉन्सेप्ट हमें आज के कई मुद्दे समझने में मदद करता है, जैसे प्रजनन अधिकार, कौन तय करेगा, स्वास्थ्य नीतियां, जैसे महामारी के दौरान हमने देखा कि कैसे जीवन को मैनेज किया गया, जनसंख्या नियंत्रण की बातें, या फिर पहचान की राजनीति। फुको दिखाते हैं कि ये सिर्फ नैतिकता या भलाई के मुद्दे नहीं है, ये जीवन को कंट्रोल करने और उस पर शक्ति का इस्तेमाल करने के तरीके भी हैं।
मीडिया में सेक्स का चित्रण या सोशल मीडिया पर पहचान की लड़ाइयां, इनमें भी ये डायनामिक्स दिखते हैं।
बिल्कुल, हम देख सकते हैं कि कैसे बात करने का तरीका, डिस्कोर्स, शक्ति संबंधों को बनाता है और बदलता है। कौन बोल सकता है, क्या बोला जा सकता है, किसे नॉर्मल माना जाता है, ये सब शक्ति के खेल का हिस्सा है।
इस पूरी मतलब दिमाग को झकझोर देने वाली बातचीत से मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात ये निकल के आई कि जिसे हम अपना सबसे निजी, सबसे अंदरूनी अनुभव मानते हैं, हमारी सेक्सुअलिटी, वो असल में कितना ज्यादा ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक चीज है। ये सोचना थोड़ा हाँ बेचैन करता है, पर दुनिया को देखने का एक नया चश्मा भी देता है।
मेरे लिए सबसे अहम बात यह है कि शक्ति कितनी छुपी हुई, कितनी सूक्ष्म हो सकती है। वो सिर्फ रोक टोक से नहीं, बल्कि हमारे ज्ञान, हमारे सुख, हमारी अपनी पहचान बनाने की इच्छा और सच जानने की हमारी गहरी चाहत के जरिए काम करती है। फुको हमें चुनौती देते हैं कि हम मुक्ति और आज़ादी के अपने सबसे पसंदीदा नारों पर भी सवाल उठाएं। सोचें कि क्या वे वाकई हमें आज़ाद कर रहे हैं या शक्ति के खेल में और उलझा रहे हैं।
तो असली आज़ादी शायद किसी बने बनाए लेबल में नहीं,
बल्कि शायद उन लेबलों और उन्हें बनाने वाली प्रक्रियाओं पर लगातार सवाल उठाने में है। ये एक ऐसा विचार है जो वाकई सोचने पे मजबूर करता है ना?
बिल्कुल। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।